अध्याय 9, जापान में सैन्यवाद का शेष भाग। पृष्ठ संख्या 128। जैसा कि आर ए एस्केल्पिनो ने कहा है, जापानी राष्ट्रवाद हमेशा लोकतांत्रिक उद्देश्य के लिए हानिकारक रहा। जापानीज नेशनलिज्म वाज ऑलवेज ऑफ डिससर्विस टू द डेमोक्रेटिक कॉज। कुछ रूढ़िवादी बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रवादी विचारधारा को एक नई सामाजिक विषय वस्तु सोशल कंटेंट प्रदान की। वे चाहते थे कि उसी प्रकार के योद्धाओं को समाज में मुख्य भूमिका निभाने के लिए आगे लाया जाना चाहिए जिन्होंने इतने लंबे अरसे तक जापान की बागडोर संभाली और जिन्हें अब साधारण नागरिकों के समान दर्जा देकर जीविका ढूंढने पर मजबूर कर दिया गया था। उनके अनुसार समाज में विशेषाधिकार योद्धाओं और कृषकों को प्राप्त होने चाहिए, न कि व्यापारियों और श्रमिकों तथा बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों को। कीता इक्की ने ओकावा शुमेई के साथ मिलकर यू जोनसा नामक उग्र राष्ट्रवादी संगठन कायम किया। कीता इक्की ने अपने लेखों द्वारा ऐसे एशियाई राष्ट्रवाद, एशियन नेशनलिज्म का प्रचार किया जिसमें जापान संयुक्त एशिया का नेतृत्व करे। उसका मत था कि यह सब जापान और जापानी समाज के बुनियादी संशोधन पर निर्भर करता था, जिसे सैनिक विप्लव मिलिट्री कॉप द्वारा उस समय के जापानी नेतागण से छुटकारा पाकर और सम्राट एवं प्रजा के बीच सीधे संबंध पर आधारित निरंकुश शासन कायम करके पाया जा सकता था। उसके बाद सम्राट संविधान को निलंबित करके सैनिक कानून मार्शल लॉ लागू कर दे और भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञों और व्यापारियों के प्रभाव से मुक्त राष्ट्रीय पुनः संगठन डायट को स्थापित करने का आदेश दे। यह डायट देश के मुख्य कारखानों का राष्ट्रीयकरण करके सीमा से अधिक संपत्ति जब्त कर ले, निजी संपत्ति पर रोक लगा दे और भूमि सुधार कार्यक्रम बनाए जिससे दरिद्र कृषकों को राहत मिले। कीता इक्की ने दावा किया कि इसके बाद जापान एशिया को जोरदार विस्तार के द्वारा सम्य बनाने के विशिष्ट कार्य में जुट सकता था, जो मुख्य प्रमेय कीता इक्की की रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला, जापान का उस समाजवाद की ओर विकास जिसके आधुनिक रूप की पहचान राष्ट्रीय शासन विधि नेशनल पॉलिटी या कोकुताई से की जा सके। दूसरा, जापान का दूसरे समाजों को पाश्चात्य साम्राज्य के शोषण से मुक्त कराने का दैविक कर्तव्य कीता के विचारों ने ही उन सेना अधिकारियों की विचारधारा को पृष्ठभूमि प्रदान की जिन्होंने शोवा पुनः स्थापन की सिफारिश की और 26 जनवरी की घटना का असफल नेतृत्व किया। गोंदो सेइकेयो ने अपने स्वराज्य मत निची गक्काई द्वारा ऐसे कृषक राष्ट्रवाद नोहोन शुगी का प्रचार किया जिसके द्वारा जापान राज्य स्वशासित ग्रामीण समुदायों द्वारा सम्राट के सीधे नियंत्रण से चले ताकि अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी और एकाधिकारी पूंजीवाद मोनोपोस्फेट कैपिटलिज्म से मुक्ति प्राप्त हो सके। ओकावा शुमेई जो असैनिक रूढ़िवाद के 1920 से 45 के काल में सबसे अधिक समर्थक थे, का कहना था कि सामाजिक तनावों से छुटकारा केवल उसकी पुरानी परंपराओं को पुनः जागृत करके ही पाया जा सकता था। उसने 1925 में कोचीशा नामक रूढ़िवादी संगठन बनाकर एशिया और पश्चिम के बीच अवश्यंभावी युद्ध जिसमें जापान पूर्व का नेतृत्व करेगा और अमेरिका से जूझेगा जैसे विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया। वैसे तो अधिकतर नेता शक्तिशाली सेना कायम करने के पक्ष में थे, लेकिन उनमें से कुछ ने विशेषकर इस विचार को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। फील्ड मार्शल यामागाता, आरितोमो और उनके सहयोगियों का न केवल सेना की शक्ति और मान की वृद्धि में अटूट विश्वास था, बल्कि वह चाहते थे कि युद्धामूल्य आम व्यक्ति के जीवन में भी प्रवेश कर जाए। यामागाता का सैनिक एवं असैनिक दोनों प्रकार की सरकारों पर गहरा प्रभाव था। एक असैनिक अधिकारी के रूप में उन्होंने स्थानीय सरकार की केंद्रीय प्रणाली स्थापित करने में भारी योगदान दिया। देशभक्ति पर आधारित शाही शिक्षा अध्यादेश इंपीरियल रीस्क्रिप्ट ऑन एजुकेशन को लिखित रूप दिया तथा 1889 में मेजी संविधान को जितना भी अनुदारवादी हो सका बनाया। एक सेना अधिकारी के रूप में उसने अपने आश्रितों के साथ मिलकर अनिवार्य सैनिक सेवा कंस्क्रिप्शन जैसी प्रणालियों को स्थापित किया, जिन्होंने सैन्यवाद के लिए ईंधन का कार्य किया। 1930 के दशक में सरकार द्वारा कई प्रकार के असैनिक नियंत्रण से सेना को छुटकारा देकर उसकी बढ़ती हुई शक्ति में एक प्रकार का योगदान दिया गया। स्थल और नौसेना मुख्यालयों के अध्यक्षों जो सैन्य नियोजन एवं संचालन का कार्य देखते थे को सम्राट से सीधा संपर्क स्थापित करने का अधिकार प्राप्त था और इस तरह वे असैनिक नियंत्रण से स्वतंत्र होकर कार्य कर सकते थे। स्थल और नौसेना मंत्रियों की तरह वह मंत्रिमंडल के सदस्य न होने के कारण प्रधानमंत्री के सामने उत्तरदायी नहीं थे। इस प्रकार जहां तक सैन्य मामलों का संबंध था, सैन्य मुख्यालय तो अपने में एक अलग किस्म की सरकार ही बना बैठा था। सैन्य मुख्यालय के स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार मेजी संविधान में कानूनी तौर पर दिया गया था। इस दस्तावेज की धारा 11 में कहा गया है कि सम्राट को स्थल और नौसेना पर सर्वोपरि अधिकार प्राप्त था और धारा 12 के अनुसार केवल सम्राट ही सशस्त्र सेनाओं का संगठन और उनकी शांतिकालीन संख्या निर्धारित कर सकता है। इन धाराओं का एक परिणाम यह हुआ कि कानूनी तौर पर सैन्य मुख्यालय के अध्यक्ष असैनिक सत्ता के नियंत्रण से मुक्त थे। हालांकि यह संवैधानिक हथियार स्थल सेना या नौसेना ने कभी भी प्रयोग नहीं किया था, लेकिन इसके प्रयोग की केवल धमकी ही हमेशा सशस्त्र सेनाओं के पक्ष में फैसले करवा सकती थी। निसंदेह, जैसा कि स्मैथर्स्ट का कहना है, सरकार अक्सर सैन्य हवाओं के अनुकूल ही अपने पालों का संतुलन बनाती थी, क्योंकि उसे डर लगा रहता था कि कहीं सशस्त्र सेनाएं स्वतंत्र कार्यवाही न करने लगे। द गवर्नमेंट ऑफन ट्रिमेड इट्स सेल्स टू मिलिट्री विंड्स बिकॉज ऑफ इट्स फियर डेट द आर्म्ड फोर्सेस वुड टेक इंडिपेंडेंट एक्शन। सशस्त्र सेनाओं को एक और विशेष अधिकार प्राप्त था, वे अपने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में मनोनीत कर सकती थी और उन्हें वापस भी बुला सकती थी। 1898 और 1945 के बीच केवल वह सैन्य अधिकारी जो सेना में सक्रिय थे और फलतः जिन पर सेना का अनुशासन लागू किया जा सकता था, स्थल और नौसेना मंत्रियों के रूप में कार्य कर सकते थे। ऐसी स्थिति में स्थल और नौसेना को किसी भी असैनिक सरकार पर निर्णायक वर्चस्व प्राप्त। प्रधानमंत्री अपने स्थल और नौसेना मंत्री सेना के सहयोग के बिना नियुक्ति नहीं कर सकता था, और यदि वह अपने मंत्रिमंडल के सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं कर सकता था तो कानून उसे इस्तीफा देना पड़ता था। इस प्रकार सेना बड़ी आसानी से मंत्रिमंडलों का बनना रोक भी सकती थी और उन्हें गिरा भी सकती थी। इस अधिकार का प्रयोग वैसे तो केवल एक ही बार जनवरी 1937 में किया गया, जब सेना ने जनरल उगाकी काजुशिगो द्वारा मंत्रिमंडल बनाने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। लेकिन सेना अक्सर इसी अधिकार के प्रयोग की धमकी देकर बड़े आराम से सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूत कर सकती थी। संवैधानिक और कानूनी शक्तियों की तरह ही विभिन्न प्रकार के उपायों से सेना ने भी अपने लिए समर्थन प्राप्ति का स्थिर ढांचा तैयार कर लिया था। देशभक्ति की विचारधारा द्वारा सैन्यवाद का सामाजिक आधार पैदा करके तथा कई संगठन बनाकर और फिर उनका दुरुपयोग करके सैन्य मूल्यों का प्रचार किया गया। कई राष्ट्रीय स्तर के देशभक्त संगठन बनाए गए जिनके सदस्य जिम्मेदार सैनिक और असैनिक नेता बने। इन नेताओं के परंपरागत परिवार ट्रेडिशनल फैमिली से संबंधित विचारों ने भी उस देशभक्ति के बढ़ावे में महत्वपूर्ण योगदान दिया जो 1930 के दशक में सैन्यवाद का विशेष अंग बने। भावुकता के स्तर पर देशभक्ति आंदोलन ने सम्राट के लिए लोगों की धार्मिक श्रद्धा का फायदा उठाया। सैनिकों और नागरिकों को पहले के समुरायों की तरह सम्राट के नाम पर लगन, वफादारी, आज्ञा पालन, बहादुरी, सहयोग, संयम और सादेपन जैसे गुण अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। सैन्यवादियों ने प्रचार मनोविज्ञान प्रोपेगेंडा साइकोलॉजी का भी पूर्ण प्रयोग किया क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि चालाकी से कहे गए झूठ को भी बार बार बोलने से सच्चाई का रूप दिया जा सकता है। आधुनिक जापान के इतिहास की एक मुख्य घटना 1889 के मेजी संविधान में प्रदर्शित किया गया सम्राट का स्थान था। कोई भी व्यक्ति संविधान की आलोचना नहीं कर सकता था क्योंकि सम्राट की आलोचना करना वर्जित था। चूंकि सम्राट को एक प्रकार से अर्धदेव, सर्वबुद्धिमान और एक पवित्र आदर्श के रूप में दर्शाया गया, उसे सारे राष्ट्र से अलग कर दिया था ताकि कोई उसकी आलोचना तो किया उसे वाद विवाद का विषय भी न बना सके। मेजी काल के अधिकतर नेताओं ने जापान को शक्तिशाली बनाने के अपने सपने को साकार करने के लिए इसका बहुत फायदा उठाया। जापानी प्रजा के लिए तो शासक मनुष्य के रूप में भगवान अराहितोगामी था जिसकी वंशज सूर्य देवी अमातेरासु थी। इस प्रकार सम्राट जिसके वंश ने निरंतर 2500 वर्षों से भी अधिक समय तक राज किया जापानी राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु बन गया। वाणिज्य मंत्री ओउरा ने पहले ही 1908 में घोषणा कर दी थी कि हमारे राजघराने की शान दुनिया की हर वस्तु से ऊपर है और हम इस बात को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि यह इतनी ही चिरस्थायी है जितने की आकाश और पृथ्वी। यदि इस बात पर विवाद किया जाए कि हमारे देश को एक धार्मिक मत की जरूरत है तो मेरे विचार में हमें साम्राज्यवाद का धर्म अर्थात सम्राट पूजा अपना लेनी चाहिए। द मैजेस्टी ऑफ आवर इम्पेरियल हाउस टावर्स एवव एवरीथिंग इल्स इन द वर्ल्ड एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट इट इज एज परड्यूरेबल एज हेवन एंड अर्थ इफ इट इज कंटेस्टेड डेट आवर कंट्री नीड्स ए रिलीजियस फेथ देन इन माई ओपिनियन वी मस्ट एडॉप्ट द रिलीजन ऑफ इम्पेरियलिज्म इन अदर वर्ड्स द वर्शिप ऑफ द एम्पीरर। असल में सम्राट को श्रेणीबद्ध जापानी परिवार में राष्ट्रपिता के रूप में देखा जाता था। इस श्रेणीबद्धता में दोनों सैनिक और असैनिक अधिकारी उसके प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते थे। जब सेना का एक साधारण जवान अपने कमांडर के आदेश का पालन करता था तब वह ऐसा करते समय यह भी समझता था कि वह अपने सम्राट की भी आज्ञा का पालन कर रहा है। उदाहरणतया मिनोदा कियोकी ने 1933 में यह घोषणा की कि जब हम अपने सम्राट की एक जीवित देव के रूप में श्रद्धापूर्वक सेवा करते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं, हम मानव जाति की सेवा करते हैं। When we faithfully serve our emperor as a living god and defend our home country, we serve humanity। उसने सिफारिश की कि जापानी लोग मानव जाति की सेवा जापान को विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर ही कर सकते हैं। सरकार ने इन आदर्शों को सैनिक और असैनिक संस्थाओं के शैक्षिक पाठ्यक्रम का अंग बना दिया। मोरी अरिनोरी, जिन्होंने जापानी शैक्षिक नीति को मुख्य रूप देने में भारी योगदान दिया, का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के विषय में जो कुछ भी किया जाए वह विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि मातृभूमि के लिए किया जाना चाहिए। प्रजा के मन में राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए शिक्षा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। अब जापानी सचमुच यह विश्वास करने लगे थे कि युद्ध कक्षाओं में जीते जा सकते थे।